क्लिप नंबर 1660। इस क्लिप में आप सूरह जुमा की आयत नंबर 9 से 11 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समात फरमाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून।
तर्जमा, ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है।
या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह।
ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए। इस आयत से नमाज जुमा के अहकाम बयान किए जा रहे हैं। यहाँ इस आयत से मुतालिक तीन बातें समाप्त कीजिए। नंबर एक, इस आयत में अजान से मुराद पहली अजान है, ना कि दूसरी अजान जो खुतबे से मुत्तसिल होती है। अगरचे पहली अजान हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के जमाने में इजाफा की गई, मगर नमाज की तैयारी के वाजिब होने और खरीदो फरोख्त तर्क कर देने का ताल्लुक उसी से है। नंबर दो, दौड़ने से भागना मुराद नहीं है, बल्कि मकसूद यह है कि नमाज के लिए तैयारी शुरू कर दो, और जिक्रुल्लाह से जमूर उलमा के नजदीक खुतबा मुराद है। नंबर तीन, इस आयत से नमाज जुमा की फर्जियत, खरीदो फरोख्त वगैरह दुनियावी मशागिल की हुर्मत और सई यानी नमाज के अहतमाम का वजूब साबित हुआ और खुतबा भी साबित हुआ। जुमा की वजह तस्मिया, अरबी जबान में इस दिन का नाम अरूबा था, बाद में जुमा रखा गया, और सबसे पहले जिस शख्स ने इस दिन का नाम जुमा रखा वो काब बिन लुवी हैं। इसकी वजह तस्मिया के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। इनमें से एक यह है कि इसे जुमा इसलिए कहा जाता है कि इस दिन नमाज के लिए जमातों का इज्तिमा होता है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का पहला जुमा। सीरत बयान करने वाले उलमा का बयान है कि जब हुजूर अकदस अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन चाश्त के वक्त कुबा के मकाम पर ठहरे। पीर से लेकर जुबेरात तक यहाँ कयाम फरमाया और मस्जिद की बुनियाद रखी। जुमा के दिन मदीना तैयबा जाने का अजम फरमाया। बनी सालिम बिन औफ की वादी के दरमियान जुमा का वक्त आया। उस जगह को लोगों ने मस्जिद बनाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने वहां जुमा पढ़ाया और खुतबा फरमाया। ये पहला जुमा है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अस्हाब रदी अल्लाहु ताला अन्हुम के साथ पढ़ा। रोजे जुमा के फजाइल, कसीर अहदीस में जुमा के दिन के फजाइल बयान किए गए हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर दिन जिस पर सूरज ने तुलू किया जुमा का दिन है। इसी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी में जन्नत में दाखिल किए गए, और इसी में इन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म हुआ, और कयामत जुमा ही के दिन कायम होगी। नंबर दो, इब्ने माजा की हदीस, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो कि यह दिन मशहूद है, इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं और मुझ पर जो दुरूद पढ़ेगा पेश किया जाएगा। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने अर्ज की और मौत के बाद? इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जिस्म खाना हराम कर दिया है, अल्लाह ताला का नबी जिंदा है, रोजी दिया जाता है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ बेहतरी से मुराद लुगवी बेहतरी है, यानी दुनियावी कारोबार से नमाज जुमा और खुतबा वगैरह बेहतर है। इससे ये लाजिम नहीं आता कि यह हाजिरी वाजिब ना हो, सिर्फ मुस्तहब हो।
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ।
ترجمہ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ،
फिर जब नमाज पूरी हो जाए, यानी जब नमाज पूरी हो जाए तो अब तुम्हारे लिए जायज है कि माश के कामों में मशगूल हो जाओ, या इल्म हासिल करने, मरीज की इयादत करने, जनाजे में शिरकत करने, उलमा की जियारत करने, इन जैसे दीगर कामों में मशगूल होकर नेकियां हासिल करो, और नमाज के अलावा भी हर हाल में अल्लाह ताला को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो।
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین.
ترجمہ: اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے. تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا.
اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا. شان نزول: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا. دستور کے مطابق اعلان کے لیے طبل بجایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف چل دیے حتیٰ کہ 12 آدمیوں کے سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا. میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 افراد میں شامل تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبے کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے. آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے اس لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو. یاد رہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں اجناس ختم نہ ہو جائیں اور وہ انہیں پانے سے رہ جائیں, اور ایسے حالات میں اس طرح ہونا ایک فطری امر ہے. نیز اس آیت کے نزول سے پہلے اس طرح کے فعل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس آیت کے ذریعے حکم نازل کیا گیا تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا. اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں, لہٰذا ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. نوٹ: اس سے ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا چاہیے.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.